आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारण के समय सार
गाथा 36 पर प्रवचन सुनिए।
नमः समय साराए गौरव क्या चकार से चित्त भावाय भावाय सर्वभावं
सार परमागम की
36वीं गाथा पर चर्चा आरंभ की है। तो गाथा में ये बात आई है, पेज नंबर 289 आपकी किताब में देखें, नत्थिम में को भी मोह बुज्जति उपयोग एव अहमेक को तम मोह निम्न मत्तम समयस्त व्यायणा मेंती। मोह मेरा कुछ नहीं है, मैं तो एक उपयोग स्वरूप हूँ, उसको समय के जानकार मोह से निर्मम कहते हैं। समयस्त व्यायणया, समय शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। समय माने टाइम तो होता ही है, समय माने आत्मा भी होता है, समय माने क्षेत्र भी होते हैं, समय माने युद्ध भी होता है। गीता में होता था समय समय माने युद्ध में, और भी अनेक अर्थ, समय माने देश भी होता है, समय माने काल भी होता है, अनेक अर्थ होते हैं। समय माने सिद्धांत भी होता है, समय माने मत भी होता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ जैसा प्रकरण हो वहाँ वैसा अर्थ लिया जाता है। जैसे सैंधव शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक नमक सैंधा नमक और एक सिंधु देश में उत्पन्न हुआ घोड़ा। वहाँ की सिंधु देश की जो काबली घोड़ा होते हैं ना, वो अच्छी नस्ल मानी जाती है। लेकिन जो प्रकरण हो वैसा अर्थ लेना चाहिए। यदि भोजनालय में बात चल रही हो तो वहाँ नमक अर्थ लेना चाहिए, युद्ध के मैदान में बात चल रही हो तो वहाँ घोड़ा अर्थ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि रसोई में कोई कहे कि सैंधव माने नमक लाओ सैंधव लाओ, वो कोई घोड़ा लाके खड़ा कर दे। कोई छत्री कमर कस के तैयार खड़ा है बख्तर पहनकर और बोले सैंधव माने तो नमक लाके उनके सामने पेश कर दें। ऐसे ही यहाँ पर गाथा में सुपर भेद विज्ञान की चर्चा है ना। मोह से मैं रहत हूँ, स्व क्या है और पर क्या है, इसलिए यहाँ पर समय शब्द का अर्थ है स्वपर रूप छह ही द्रव्य। 37वीं गाथा में भी यही बात आने वाली है। अथवा समय शब्द का अर्थ है जिन सिद्धांत, तो समयस्य व्यायणा मन स्वपर को पहचानने वाले अथवा जैन सिद्धांत का मर्म समझने वाले आचार्य ये बात कहते हैं। समयस्य व्यायणा, तो इसमें नीचे लिखा ना स्वपर और सिद्धांत के जानकार आचार्य देव कहते हैं कि मोह मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो एक उपयोग मैं ही हूँ, ऐसा जो जानता है वह मोह से निर्मम है। गाथा के चौथे पद में कहा गया है कि समय को जानने वाले ऐसा कहते हैं। समय शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, समय माने आत्मा, समय माने सिद्धांत, समय माने शास्त्र आगम, समय माने स्व और पर के भेदों में विभाजित होने वाले छहों द्रव्य। इनके अतिरिक्त भी अनेक अर्थ होते हैं, जहाँ जैसा प्रकरण हो वहाँ वैसा ही अर्थ करना उचित माना जाता है। क्योंकि यहाँ स्वपर के विभाग की बात चल रही है, जिन सिद्धांत की बात चल रही है, अतः यहाँ ऐसा अर्थ किया गया है कि स्वपर और सिद्धांत के जानकार आचार्य देव ऐसा कहते हैं। मान लीजिए जैसे अपन ये कहें कि जमाना बहुत खराब है, समय को देख के बात करो, तो वहाँ पर जमाना अर्थ हो जाएगा समय का। तो समय नहीं देखते हो कैसा है ना? यानी समय का जैसा प्रकरण होगा वैसा अर्थ होगा। देखिए अभी अपने आगे इसमें पेज नंबर आगे पर निकाले 290, जिन मार्मिक बिंदुओं को स्पर्श करना है उनकी चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूँ। शुरू में इस गाथा के भाव को स्पष्ट करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में लिखते हैं, ये भावार्थ बहुत मार्मिक है। आगे इसी के आधार पर 38वीं गाथा तक वो सारी चीज चलने वाली है। ये जो इसमें खोली है, यह मोह कर्म जड़ पुद्गल द्रव्य है। उसका उदय कलुष भाव रूप है। देखो ये मूल कर्म बोल रहे हैं, रागदेश मूल के परिणाम को, और जड़ पुद्गल रूप कह रहे हैं। यहाँ से लेकर के 68 गाथा तक पूरा जीवा जीवाधिकार समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर राग देश मूल विकारी भावों को एकदम जड़ कह करके ही बात की है। वहाँ क्या बस दुनिया को दो भागों में बांटना एक नियम है, पर दो भाग के हमने एक का नाम रखा आत्मा चेतन और दूसरे का नाम रखा जड़। अब उसमें ये नहीं देखना कि जड़ का मतलब रूप रस गंध स्पर्श हो, ऐसा पुद्गल ही जड़ है, पर जो आत्मा नहीं है वे सब जड़ है, बस इतनी सी बात है। हमने एक नियम, बस हमने दुनिया को दो भागों में बांटा और एक भाग को हमने डिफाइन कर दिया कि ए ए, दूसरे भाग में बाकी जो शेष चीजें हैं वो सब दूसरे में, हमने वक्ता और श्रोता अब इन दो भागों में बांट दिया सबको। तो एक वक्ता हो गया तो बाकी सब श्रोता, तो हम पुलिस वाले खड़े हो गए जी व्यवस्था के लिए, तो मेरी श्रोता में दो ही में बांटो, तीसरा तो कोई विभाग है ही नहीं ना, और ये स्पीकर वाले भाई बैठे हैं ये, मेरा मतलब समझे ना, नहीं नहीं साहब ये तो श्रोता भी नहीं है तो वक्ता भी नहीं है, तो तीसरा भेद तो है ही नहीं, क्या ख्याल में। ऐसे अपने जो जैनी हिंदू कहलाते वो तो ऐसे ही है ना, आपको मालूम है कि भारतीय संस्कृति के चार अध्याय एक किताब लिखी है दिनकर ने, तो उसने ये लिखा कि जैन दर्शन शुद्ध आध्यात्मिक दर्शन था, उसमें जो पूजा पाठ क्रियाकांड और जो बातें जो आ गई हैं ये किस कारण से आई हैं इसकी उन्होंने रिसर्च की, तो उसमें उन्होंने एक बहुत बढ़िया हेतु दिया। एक राजा था मुसलमान, तो उसने कहा कि बहुत धर्म है, ये इतने ज्यादा धर्म देश में अच्छे नहीं है, बस दो धर्म जैसे आज कहते हैं ना राजनीतिक पार्टियां सैकड़ों हो गई हैं, पर दो पार्टियां होना चाहिए, इंग्लैंड में दो पार्टियां हैं ना, अमेरिका में भी दो पार्टियां हैं, पर दो पार्टियां रखो, ज्यादा पार्टियां नहीं होना, इससे राजनीति बिगड़ जाती है। तो मेरा दो धर्म रखना है हमको, एक हिंदू धर्म और एक मुसलमान धर्म, मुसलमान राजा तो था ही वो, अपने धर्म को तो रखा ही, और दूसरा एक हिंदुस्तान का धर्म, हिंदू धर्म मैंने हिंदुस्तान धर्म, और बाकी सब धर्म वालों से कहा कि तुम दो में से किसी में शामिल हो जाओ, तीसरा कुछ हम नहीं रखेंगे। अब बड़े धर्म संकट खड़ा हुआ, तो हमारे जैनी मुसलमानों के साथ तो जा ही नहीं सकते थे, उनके पास तो कोई दूसरा रास्ता नहीं था कभी अपने हिंदू को घोषित करें। उसमें ऐसा लिखा है, भारतीय संस्कृति के चार अध्याय दिनकर की किताब है, उसमें लिखा है जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये मेरी तरफ से मेरी नहीं समझना, कि जब तक जैनियों में मुर्दे जलाए नहीं जाते थे गाड़े जाते थे, क्योंकि वो ये मानते हैं जलाने में बहुत जीवों की हिंसा होती, उसमें भी अनंत जीव पड़ जाते हैं और आसपास के जीव भी जल जाते हैं, तो गाड़ देते थे, और ये जो छूता छूत बिल्कुल नहीं था, और तीसरे क्रियाकांड नहीं था, इतना व्यवहार का विस्तार नहीं था, पूजा पाठ वगैरह के बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े जो विस्तार है, तीन चीजें नहीं थी जैन धर्म में, तो अध्यात्म प्रधान धर्म था ना, तो जब उसने कहा हम हिंदू धर्म में शामिल होंगे, तो हिंदू ने कहा हम तुम्हें शामिल नहीं करते, क्यों कि हमारे यहाँ तो मुर्दा जलाया जाता है गाड़ा नहीं जाता है, तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी, तुम्हें ये करना पड़ेगा और ये पूजा पाठ करना पड़ेगा और छूता छूत मानना पड़ेगा, यदि तुमने ये बात नहीं मानी तो हम तुम्हें हिंदू नहीं मानेंगे, जो मुसलमान बन जाओ, क्योंकि मुसलमान के भी गाड़ते हो तुम भी गाड़ो, तो वो तो महाहिंसक धर्म है, यानी उसके साथ तो उसका कोई मेल बैठ ही नहीं सकता था, खान पान उठना बैठना नहाना धोना, तो ये जो तीन चीजें उस वक्त बात धो करके जैनी को स्वीकार करनी, ये रामचंद्र हरि सिंह दिनकर ने जो अपने राष्ट्र कवि हुए उन्होंने अपने इतिहास की किताब में ये बात, वो तो हम भूल गए, अब देश स्वतंत्र हो गया और अब ऐसी कोई बात नहीं, अब देश ने छह धर्म स्वीकार कर लिए, अभी भी धर्म के खाते में छह ही माने ना, ऐसा नहीं समझना कि उस मुसलमान राजा ने कोई ज्यादा बड़ी गलती की थी, इतने भी छह ही माने हैं तो हजारों, क्यों छह ही माने कभी माने, पर आज भी नहीं आते हमारे सामने समस्या कि तुम अपने को दिगंबर कहना बंद कर दो, फिर तुम चाहे जो कुछ करो। हमें कैसा, हम जब जैन कहना बंद कर दें तो किसी पे कोई ना कोई छह में से एक में से लिखना पड़ेगा। हमें तो जो जनगणना होगी तो छह में से एक ही नाम लिखाना पड़ेगा ना, तो जिससे कहेंगे हम तुम्हारे में शामिल होते वो कहते मेरे नियम मानो। क्यों? मैंने ये दुनिया में ये तो संकट हमेशा ही खड़े होते रहेंगे ना। मैं एक बात इसलिए कह रहा हूं कि राजा भी जब धर्मों को दो भागों में बांट सकता है और हमें किसी न किसी एक भाग में रहना पड़ेगा, तो अध्यात्म ने इस दुनिया को दो भागों में बांटा तो कौन सा गर्व किया? और एक में तू तेरा आत्मा और एक का नाम जड़। अब वो चाहे जड़ हो चाहे नहीं हो, जड़ की परिभाषा उसमें घटित होती हो चाहे नहीं होती हो, वो सब जड़। ऐसा गजब हो गया कि मेरा आत्मा मेरे लिए चेतन और तुम्हारा चेतन आत्मा मेरे लिए जड़। अब उसमें तो ज्ञान दर्शन पाया जाता है, रूप रस गंध स्पर्श पाया नहीं जाता है, और तुम उसे जड़ कह रहे, बोलो है? तो एक मुसलमान राजा के आदेश से तुम तो इतना परिवर्तन कर सकते हो कि गाड़ने की बजाय मुर्दों को जला सकते हो। क्यों? तो एक आत्मा समझने के लिए परात्मा को जड़ नहीं कह सकते। अपने यहाँ जो भेद विज्ञान है वो भेद विज्ञान का माने अपने और पराये के बीच में भेद की रेखा खींचना, ख्याल में ना, उसका नाम है सुपर भेद। दुनिया को दो भागों में बांटना और एक भाग में हम अपने को रखना और एक भाग में सारे जगत को रखना, और ये कोई कठिन काम नहीं है। इसके हम माहिर हैं। हर आदमी ये समझता है कि दुनिया में कुल डेढ़ अकल है। बस डेढ़ अकल का मतलब सुनिए ना, एक बुद्धि जितनी दुनिया में है उस पूरा उसका नाप बनाए, यूनिट बनाए, तो वो डेढ़ बनेगी। और डेढ़ अकल है और उसमें से एक मेरे पास है और आधी सारी दुनिया में है। ऐसा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो मानना ही मानते ही हैं, मानना ही चाहिए कहते हैं। लेकिन एक गुजरात में एक शब्द चलता है डेढ़ डाहा, बोलते ना डेढ़ डाहा का मतलब क्या? कि ये ऐसा है वो डेढ़ अकल पूरी की पूरी मेरे में ही है पर बाकी के लोगों में है ही नहीं है। मुझे बोलते डेढ़ डाहा है। ओवर वाइज जिसे आप बोलते ना, फिर कोई और दूसरे के पास है ही नहीं हुआ कल मकल। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि ये बात सच्ची है, भले ही दुनिया तुम्हें डेढ़ डाया कह के मूर्ख कहे, ओवर वाइज कहे, कि ये कहते हैं कि तेरी अकल पूरी की पूरी तेरे ही पास है, दूसरे के पास तो बिल्कुल ही नहीं है ना। दूसरे की अकल तेरे लिए अकल थोड़ी है, वो तो तेरे लिए गैर है, मात्र जानने लायक है और तेरे किसी काम की नहीं है। जैसे स्त्री पुत्र मकान जायदाद चश्मा घड़ी ये चीज पदार्थ देखने लायक है ना, ऐसे दूसरे की अकल भी देखने लायक है, अगर जानने के काम है। जो जो अकल का लाभ तेरे को प्राप्त होना है वो तो तेरी अकल का तेरे को प्राप्त होगा, समझे ना। इसलिए कहते दुनिया को दो भागों में बांटा, दूसरे का नाम क्या रखा? जड़। देखो इसमें लिखा ना, अपने पढ़ा था भी, मोह कर्म जड़ पुद्गल द्रव्य है। अब उसे एक जगह जड़ दूसरे पुद्गल नाम भी दिया, तो पुद्गल की एक परिभाषा है ना, रूप रस गंध स्पर्श बल मंता पुद्गला, ये परिभाषा यहां नहीं लेना, बस बस आत्मा नहीं उसको पुद्गल, ऐसी परिभाषा है। उसका उदय कलुष भाव रूप है। जब वो मोह कर्म का उदय आता है तो जड़ रूप पुद्गल द्रव्य का परिणमन है, ज्ञान वर्णादि कर्म पुद्गल द्रव्य है ना, तो आत्मा में जब उसका उदय आता है तो आत्मा मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है। वह भी मोह कर्म का भाव होने से पुद्गल का ही बुकार है। यानी वो तो जड़ कर्म तो पुद्गल है ही, लेकिन ये पुद्गल कर्म के निमित्त से हुआ, इसलिए इसको भी हम जड़ ही कहते हैं, पुद्गल ही कहते हैं। जो उसके निमित्त से हुआ वो उसके ही खाते में डालते हैं। ये अध्यात्म की शैली है। हर जगह घटाओगे तो बहुत चक्कर में पड़ जाओगे। ये अध्यात्म की शैली सिर्फ अध्यात्म में भेद विज्ञान के प्रकरण में ही घटित करना। छह द्रव्य का पाठ पढ़ाएं और वो कहने लगे कि ये क्या है, वहां तो वही बहन है जो रूप स्कंध स्पर्श वाला हुआ पुद्गल, वही परिभाषा रखना। वहां आकाश को पुद्गल नहीं कहना, यहां आकाश को भी पुद्गल कह रहे, काल द्रव्य को भी पुद्गल कह रहे, मैंने मेरे से जुदा है वो सबका नाम पुद्गल। तो ये वहां वो अलग बात है, ये अलग बात है। ये बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी विद्यार्थी ये आए ना पालवत पारमाला भाग दो पढ़ेंगे तो वहां एक छद्रव की अलग सी परिभाषा पढ़ाएंगे, पुद्गल की ऐसी परिभाषा बताएंगे, और यहाँ ये कह रहे हैं कि वो आकाश भी पुद्गल, काल द्रव्य भी पुद्गल। तो समझ लेना है दोनों में जो महान अंतर है। सच्ची बात तो पूरी तरह सच्ची बात तो वो ही है कि द्रव्य छह है और अलग की अलग अलग परिभाषा है। तो ये नहीं है कि ये तो तेरे आत्मा तक तेरे को पहुंचाने के लिए सबको एक ग्रुप बना के पुद्गल कहा है, क्योंकि उनका डिटेल बताने जाए तो वहां उलझते हैं। हमको ज्यादा वहां उलझने में समय नहीं है। सबका एक नाम हमने श्रोता रख लिया। ऐसा क्यों कहते, कुछ स्त्री, कुछ पुरुष, कुछ बच्चे, कुछ बीना के, कुछ बीना के बाहर के, कुछ महाराष्ट्रियन, कोई ऐसे भेद है ना। भेद तो है, लेकिन भेदों में जाएंगे तो हमारा समय खराब होता है। तो हमने तो एक नाम सबका एक श्रोता रख लिया। तो उनके अंदर जो परस्पर में भेद है ये उसके निषेध की बात नहीं है। वो भेद है, वो भी सत्य है। यदि नहीं होता तो अभी हाले क्यों कह रहा, पुरुषों में पुरुष बैठे, महिलाओं में महिलाएं बैठे, अपनी अपनी लेन से बैठे, अलग बैठे, तुम यहां से हटो, ये क्यों किया जाता है? वो है कि नहीं है? क्यों महाराष्ट्र के विद्यार्थी एक तरफ बैठे, फलाने वाले एक तरफ बैठे, वो मराठी अध्यापक है मराठी में पढ़ाएगा उसके पास बैठे, वो भेद भी है और प्रयोजन भूत भी है और इसीलिए उसका उपयोग भी करते हैं। लेकिन आत्मा तक पहुंचने का जो प्रयोजन है उसके भेद में जाना यहां प्रयोजन भूत नहीं है। इसलिए अध्यात्म की भाषा में वो भेद से ही इनकार करते हैं। क्यों पाटनी जी, कैसी मिल जी? ये अध्यात्म की शैली है। जो शैली ख्याल में नहीं आएगी तो पचासों कन्फ्यूजन उसको खड़े होंगे। देखो यह भावक का भाव जब चैतन्य के उपयोग के अनुभव में आता है तब उपयोग भी बेकारी होकर रागादि रूप मलिन दिखाई देता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। क्या कहते हैं कि ये भाव तो भावक का है। ये भावक का है का मतलब क्या, भावक माने वो ज्ञानावरणी आदि जो द्रव्य कर्म है ना, जो वास्तव में कारमान बगणा रूप पुद्गल से बने हैं, उन्हें बोलते हैं यहाँ भावक, और उनके उदय से जो भाव हो उन्हें बोलते भावक का भाव। देखो इसको ऐसा समझो कि वो आत्मा का तो विकार है, लेकिन आचार्य कह रहे कि ये तो भावक का भाव है। जो अपना अपना बेटा हो, अपना बेटा तो वो अपना बेटा है कि नहीं, लेकिन अपना जमाई है तो हम जमाई से कहते हैं कि वो आप जरा अपने साले को बुला ना, कि वो साले को आप ही बुला लीजिए ना, कि वो साला तो आपका है मेरा नहीं है। क्या आपका नहीं है? नहीं मेरा नहीं है। क्या नहीं है मेरा? बेटा मेरा है लेकिन साला तो आपका है। कहने का अर्थ क्या है, ये जो साला शब्द है ये तो बहनोई की अपेक्षा है ना, उसका नाम कोई साला थोड़ी है, वो तो बहनोई की अपेक्षा उसका नाम साला पड़ गया। तो ऐसे ही आत्मा में जो मोहराग द्वेष के परिणाम है उनका जो भाव्य नाम पड़ा वो तो भावक की तरफ से पड़ा, वो कोई अपने अपनी तरफ से थोड़ी पड़ा। तो साला किसका, बोलो बाप का कि माँ का, साला बहन वही का, समझ में आया ना आपके? बहन किसकी? बोलो बाप की कि माँ की? कि बाप की और माँ की तो बेटी होती है, बहन तो भाई की होती, समझ में आया ना? एक व्यक्ति के जो अनेक नाम हैं, अनेक पक्ष हैं, वो उसके उस पक्ष को दिखाते हैं। जब हम किसी को साला कहते हैं तो अपेक्षा में बहनोई खड़ा है, जब किसी को हम बेटी कहते हैं तो अपेक्षा में माँ बाप खड़े हैं, जब हम किसी को पत्नी कहते हैं तो अपेक्षा में पति खड़ा है। तो इन राग देश मूल भावों को जब हम भाव कहते हैं तो अपेक्षा में भाव खड़ा है, जल कर्म, समझ में आएगा नहीं? भावक खड़ा है तो भावक जिस जाति का है, भाव भी उसी जाति का है, तो भावक चूंकि जड़ जाति का है इसलिए भाव भी जड़ जाति का है। कदारी तो अन्याय है, क्यों? तो मैं पूछता हूं कि मेरी लड़की है तो मेरी लड़की तो मैं भारेल हूं तो मेरी लड़की भी भारेल होगी कि नहीं? वो शादी होगी तब भी मेरी लड़की भारेल होगी कि नहीं? पागलपन की बात करते हो, मेरी लड़की तो सदा भारी नहीं होगी, लेकिन वो जिसकी पत्नी है वो उसकी पत्नी और कुछ हो सकती है, जैन लिखे तलैया लिखे जो भी लिखे, समझ में आए ना आपके? मैं क्यों? क्योंकि जब जब बेटी के रूप में याद किया जाएगा तब तो वो भारी के रूप में याद किया जाएगा। चलो बाबूलाल जी, समझ गए ना आप? यानी जब भावक की तरफ से कहेंगे तो भाव कहेंगे, और आत्मा द्रव्य है और उसकी तरफ से कहेंगे तो उसे पर्याय कहेंगे, क्योंकि द्रव्य की तरफ से वो पर्याय कहलाती है, भावक की तरफ से भाव कहलाती है। और मेरे ज्ञान का गेय है कि नहीं वो मैं से? क्यों? तो मेरे ज्ञान की अपेक्षा उसका नाम क्या है? गेय। उसका नाम क्या है? भाव भी है और ये भी है। भाव है वो कर्म की, भावक की, और ये है गायक की, है एक ही चीज। क्या समझे ना? यही इसमें लिखा है, देखो पढ़ो, कि जब यह भावक का भाव जब चैतन्य के उपयोग के अनुभव में आता है, वो भाव तो भावक का है लेकिन वो ज्ञान उसे जानता है, चैतन्य के उपयोग में आता है, मैं ज्ञान उसे जानता है, तब उपयोग भी विकारी होकर रागादि रूप मलिन दिखाई देता है। तो अज्ञानियों को ऐसा लगता है कि उपयोग भी राग रूप हो गया, लेकिन जबकि उपयोग में तो कुछ राग था ही नहीं, उपयोग ने तो अकेला उसे जाना ही था। ये अनंत संसार की जड़ ये है, बस जो पढ़ के जानने का निषेध किया जाता है ना, वो इसलिए किया जाता है। अभी वो हमारे पंडित जी बोल रहे थे ना, उसमें भी बोल रहे थे, पंक्ति थी ना ऐसी, कि पर को मत जानो आत्मा को जानो, पर को नहीं जाने ना, इसका क्या मतलब हुआ? कि निषेध है ना पर को जानने का? हाँ है, तो पर को जानता है तब निषेध किया जाता है कि नहीं जानता है तब निषेध किया जाता है? क्यों राजेंद्र जी? तुम पर को मत जानो, यहां वहां मत देखो, तो तुम यहां वहां देख रहे हो तभी यहां वहां देखो मत ये कहा जाता है, और तुम यहां वहां देख ही नहीं सकते और हम कहे तुम यहां वहां मत देखो तो हमें पागल कहेगा ना कोई? उन निषेध में से सिद्ध होता है कि आत्मा पर को जानता है, पर को मत जानो। निषेध दो प्रकार का होता है, कौन सा दो प्रकार का? कि एक तो आत्मा पर को जानता नहीं है, इसका नाम भी निषेध है, और एक भैया तुम पर को मत जानो, पर के जानने में कोई लाभ नहीं है, इसका नाम भी निषेध है। तो पहले नंबर का निषेध हो तो वो जैन धर्म को स्वीकार नहीं है सर्वथा, कथनचित तो स्वीकार है, निश्चय में से तो स्वीकार है, ख्याल में है ना? लेकिन पर को मत जानो ये बात सर्वथा भी स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे आत्मा का कल्याण नहीं होगा, ये तो उपदेश है, ये तो आदेश है, क्या करो और क्या नहीं करो, उसमें से थोड़ी निकलता है कि वो करता है या नहीं करता है। क्योंकि देखो आत्मा परदेव का कर्ता नहीं है, यहाँ तो ये कहें ऑफरे का तुम परदेव का कुछ मत करो, मत कर दो, करता ही नहीं है तो करे क्या मत, क्यों निषेध दोनों है क्या नहीं? देखो अभी क्या लिखा, तब उपयोग भी विकारी होकर रागादि रूप मलिन दिखाई देता है। अब जब उसका भेद ज्ञान हो, क्या कैसा हो भेद ज्ञान, कि चैतन्य की शक्ति, ये बहुत मार्मिक है, चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति तो ज्ञान दर्शनोपयोग मात्र है, चैतन्य की जो शक्ति है उसकी व्यक्ति माने पर्याय माने प्रकट बना वो तो जानने देखने रूप ही होती है। और यह कलुषता है, कौन सी कलुषता यह माने, क्यों अनिल जी यह माने जो तेरे ज्ञान का गेय बनी है, ओ यह माने
क्या था भाई,
अरे तेरे ज्ञान का गेय बनी है ना, अभी अभी तूने जाना कि मुझे गुस्सा आया, तो आचार्य कहते तू ऐसा भेद विज्ञान कर कि मुझे गुस्सा आया ना तेरे को, वो दो तरह से आया कि एक तो वो क्रोध रूप तू परिणमित हुआ अर्थगुण की पर्याय में, और दूसरे ज्ञान गुण ने ये जाना कि ये आया, देखो लेकिन गुस्सा आया माने क्या, एक तो वो गुस्सा आया और एक तेरे जानने में आया, दो काम हुए ना, तो कहते जानने में आया ये तो तेरा काम है और जो गुस्सा आया वो पुद्गल का है, हृदय विज्ञान कर ऐसा लगा देखो पढ़ा करे, चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति को ज्ञान दर्शनोपयोग मात्र है बिली? और यह कलुषता राग देश रूप मोह रूप है, वह यज्ञ कर्म जड़ पुद्गल यज्ञ की है, कौन कलुषता कलश है, तो पहले नक्की करोगे कौन कौन किससे संबंध होते हैं, इसकी डिटेल में जाओ, तो यह अज्ञानी आत्मा पर से अपने को संबंधित मानता है तो किन किन प्रकारों से मानता है उनकी डिटेल में जाओ, तो सबसे पहले तो ये कहता है कि ये शरीर मैं हूँ, ये राग देश मोह भाव मैं हूँ, दोनों को एक साथ चलते रहना, शरीर के और राग देश मोह भाव ये क्या 37 गाथाओं का एक साथ अर्थ चलता जाएगा ना, ये दो के साथ में घटाना, ये राग देश मोह जो मेरे ज्ञान के जानने में आया, कौन सा राग देश कृष्णा जी साहब, वो आप में जो राग देश है वो नहीं, जो मेरी आत्मा में राग देश है वे मेरे ज्ञान के गे बने, जो उन राग देश की बात है, कल तो मैंने कहा था, कल लोग थे ना उन्हें ख्याल में होगा कि आपका राग देश तो अजीब में है, आपका राग देश तो मेरे विकारी पर्याय में मैंने गिनता ही नहीं हूँ उसे, वो तो परद्रव्य में चला गया, ठीक है ना बाबूला जी साहब, वो एक जो शरीर पुद्गल ये सब दुनिया एक खम्बा ये मेरे जानने में आया, तो ये दोनों चीजें जो मेरे जानने में आई, तो जो जो चीजें जानने में आती हैं, पहले सबसे बड़ी गलती तो ये करता कि यही मैं हूं, इसको बोलते शास्त्र में अहम बुद्धि अथवा एकत्व बुद्धि, राग देश में और शरीर में, शरीर माने गे और राग देश माने भाव, इन दोनों में एक तो ये अहम बुद्धि करता है कि ये ही मैं हूं बस, कहते हो पंडित जी आपको गुस्सा बहुत आता है, आप जरा गुस्सा छोड़ दो तो हम आपको अपना सकते हैं, देखो जी मैं तो जैसा हूं अच्छा बुरा, यदि आपको अपनाना है तो वैसा ही अपनाना पड़ेगा मेरे गुण दोषों सहित, बोलते कि नहीं बोलते आप, ये शर्तें बरते नहीं लगेंगी, जैसा भी मैं हूं तुम्हें मुझे वैसा ही अपनाना पड़ेगा, माने मैं राग देश का पिंड हूं तो राग देश सहित वाला पंडित हुकुमचंद तुम्हें अपनाना पड़ेगा, नहीं अपनाना सकते तो मैं तुम्हारा नहीं हो सकता, इसका मतलब मैंने अहम बुद्धि की ना उसमें, जैसा मैं हूं, कभी और तो सब ठीक हैं, लेकिन के बाल सफेद हैं, बाल ठीक होते नहीं होते, काले होते तो लड़की पसंद आ जाती, तो ठीक है अभी ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मैं बाल बाल छोड़ के आ जाऊं और तुम्हारे यहां जाऊं, तुम्हें तो मेरे से शादी करनी पड़ेगी, तो जैसी भी सफेद काले बाल है ना
पूरी की पूरी स्वीकार करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, और लोक में इसे अच्छी बात माना जाता है। पत्नी भी पति को गुण दोषों से स्वीकार करती है और पति भी पत्नी को गुण दोषों से स्वीकार करता है, तो सब ठीक है, लेकिन के बाल सफेद हैं, बाल ठीक होते नहीं होते, काले होते तो लड़की पसंद आ जाती, तो ठीक है। अभी ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मैं बाल बाल छोड़ के आ जाऊं और तुम्हारे यहाँ आ जाऊं, तुम्हें तो मेरे से शादी करनी पड़ेगी, तो जैसी भी सफेद काले बाल है ना, पूरी की पूरी स्वीकार करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, और लोक में इसे अच्छी बात माना जाता है। पत्नी भी पति को गुण दोषों से स्वीकार करती है और पति भी पत्नी को गुण दोषों से स्वीकार करता है, क्या जैसा भी है ऑन द होल भी अब जो है सो है। नहीं नहीं तुम क्रोध छोड़ दो ना पंडित जी, तो हम तुम्हें अपना लेंगे। भैया हम क्रोध तो हम छोड़ना चाहते हैं, तुम्हारे से दोस्ती करने के लिए नहीं, मोक्ष जाने के लिए भी हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो संभव होता तो हम कभी के छोड़ दिए होते। जो काम हमने मोक्ष जाने के लिए नहीं कर पाया वो तुम कहते हो कि तुम्हारी दोस्ती के खातिर कर दो, क्यों समझेंगे ना। तो यहाँ कहते हैं पहली तो है वो ममत एकत्व बुद्धि, तो दूसरी यदि शास्त्र में पढ़कर कि ये तो मैं हो ही नहीं सकता हूँ, ये तो जड़ है, मैं चेतन हूँ, बिल्कुल अलग अलग है, कदाचित हमारे दिमाग में से वो बात निकले तो कहते ठीक है शरीर मैं नहीं हूँ लेकिन शरीर मेरा तो है, राग देश मैं नहीं हूँ लेकिन राग देश मेरे तो है, तो ममत्व बुद्धि के रूप में उनके साथ अपनापन स्थापित कर लेता। मूलता तो एकत्व बुद्धि, क्या स्त्री पुत्र मकान जायदाद सब में एकत्व बुद्धि, और ना चले काम तो ममत्व बुद्धि के रूप में पकड़ लेता है। देखो रोजाना के रोडमल जी साहब ने मुक्तिनाथ प्रकाश में बहुत अच्छा लिखा है कि ऐसा पागल की भांति बकता है, कभी तो कहता है कि स्त्री पुत्रादिक मैं ही हूँ और कभी कहता है कि मेरे हैं, माने इस आदमी को ये पता ही नहीं है कि मैं हूँ कि मेरे हैं। तो कैसे कहता है कि मैं हूँ, तो कोई नहीं कहता होगा, क्यों पुत्र को ऐसा कहता है कोई कि ये मैं हूँ, तो वे टोडामल जी कहते सीधे सीधे तो कोई नहीं कहता, लेकिन पुत्र जिएगा तो मैं ही जीऊंगा, यदि पुत्र नहीं है मेरा तो जैसे मेरा सर्वनाश हो गया और पुत्र हो गया तो मानो मैं मर जाने के बाद में भी जिंदा हूँ, ऐसा बोलो कौन नहीं मानता है। नहीं तो नहीं होते हैं जिनके पुत्र महापुण्य के उदय से, देवी पाप का उदय आ जाता है तो किसी न किसी को गले में बांध लेते हैं गोद लेने के नाम पर, अब पछताते हैं सारी जिंदगी, रोते हैं, 10-10 लाख रुपया देकर के उसी पुत्र को न्यारा करते हैं जिसे गोद लिया था, यदि मैं डोंगे घर में सीता नहीं थी ना, उन्होंने लिया था ना गोद, तो उसे 3 लाख रुपया देकर के न्यारा किया, फिर भी वो मरते दम तक उनको परेशान करता रहा। अरे तुम्हारे महापुण्य का उदय था कि कोई संतान नहीं थी, भोग भूमियों के नहीं होती है ना जैसे देवों के नहीं होती है, तो तुमसे पुण्यशाली है कि पापशाली है, तो थोड़ा अंश तुम्हारा यहाँ भी आ गया है, अब काय को मरते हो। अरे जिनके हो गए उन्हें तो पालना ही पोसना ही है, किनके बेटों ने आज तक निहाल किया है तो बताओ,
बोल रहा था।
नहीं किसी की बात नहीं, देखो सबकी बात है, हमारा जी तुम्हें खसोने की जरूरत नहीं। शांतिलाल जी की बात क्यों है, सभी के लिए है भाई, इसका मतलब ये थोड़ी है शांतिलाल जी ने सिविल लगाया है तो सारी बातें शांतिलाल जी के लिए ही है। वो तो ऐसी बात की धर्म परीक्षा में एक कहानी आती है सुना दू, बहुत मार्मिक है, ये छोटे छोटे बच्चे आए हैं सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा इनको। क्या धर्म परीक्षा में आती है अमित गति आचार्य की, एक महाराज के पास 4 मूरख गए कि महाराज कुछ दे दो, महाराज कुछ दे दो, कि बेटा हमने दिया आशीर्वाद धर्म वृद्धि के हमें तो कुछ मिला ही नहीं, कि कुछ दे दो कुछ दे दो, प्रतिज्ञा दे दो कुछ। तो उन्होंने कहा भैया ठीक है तुम्हारे मैंने अभी धर्म का उपदेश बताया जो तुम पे बने से ले लो, कि नहीं नहीं दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम अनछना पानी मत पीना। क्या ठीक है, चारों दिन चल लिए, चल करके एक गांव के 2-3 मील गए होंगे और वहां उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने कुएं में से पानी निकाल के एक आदमी छान के पीने लगा, दूसरा क्या तू छान के कैसे पी रहा। महाराज ने ये प्रतिज्ञा तो मुझे दी थी, तू कैसे पी सकता है। कि नहीं नहीं वो कर मुझे दी थी। चारों पे इस पर लड़ाई होने लगी। कैसे निक्की माने के मुझे दी थी कि जब महाराज ने ये प्रतिज्ञा दी थी वे मेरी तरफ देख रहे थे। दूसरा बोला कि मैंने आग्रह किया था कि महाराज कुछ न कुछ दे दो, तब उसके बाद उनने दिया था इसलिए मुझे दी थी। बहुत झगड़ा हुआ उनमें, तो लौट के महाराज के पास फैसला करा लाए कि आपने किसको दिया, समझ में आया कि नहीं आया। तो लौट के महाराज के पास गए कि महाराज ये प्रतिज्ञा आपने किसको दी, कि क्यों ये ना लगे भी छान के पानी पीने लग गया, प्रतिज्ञा तो आपने मेरे को दी थी। महाराज ने कैसे मूर्खों से पाला पड़ा, चारों पिए छान के इनके बाप का क्या बिगड़ता है। लेकिन नहीं, लड़ने लग गए, मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए। तो महाराज को बहुत गुस्सा आया, कहले भैया तुम में से जो सबसे ज्यादा मूर्ख हो ना उसके लिए दी है मैंने ये प्रतिज्ञा। समझ में आया कि मतलब क्यों ऐसी मूर्खता की बात करते हो, चारों में पालो ना। नहीं नहीं साहब, तो जिसको दी हो वो ही लेगा, कि जो तुम में सबसे ज्यादा मूर्ख हो उसको दी। तो महाराज वो कह मैं सबसे ज्यादा मूर्ख हूँ, मैं सबसे ज्यादा मूर्ख हूँ, आप ही फैसला करो कि मूर्ख सबसे ज्यादा कौन है। धर्म परीक्षा में लगा तो उन्होंने कहा भैया मेरे पास समय नहीं है, गांव में पंच बहुत हैं, तुम जाके उनसे फैसला करा लो कि तुम में मूर्ख कौन है। वे वहां से चले तो किसी गांव में गए और गांव वालों से सारा किस्सा सुनाया कि महाराज ने ऐसी प्रतिज्ञा दी है, और हम महाराज के पास गए तो उन्होंने कहा सबसे ज्यादा मूर्ख को दी है। तो महाराज से कहा मूर्ख कौन है निर्णय कर दो। तो महाराज बोले पंचों से करा लेना, फिर आप लोग फैसला कर दो। तो पंच लोग भी कोई कम मूर्ख नहीं थे, वो यहाँ के पंचों की बात नहीं है, तो धर्म पर ही सवाल है पंचों की बात हो, यहाँ के लोग मत घबराना भाई साहब, यहाँ कोई ऐसा नहीं करना। एक औरत मंदिर में जाके गालियां दे रही थी कि पंचों की दाढ़ी में आग लगे, लगते बुंदेलखंड की खास गाली है ना, कौन सी कि पंचों की दाढ़ी में आग लगे। इतने में एक पंच आ गया, क्या बोलती है कि आपको छोड़ते हैं। बस आपको छोड़ के बाकी पंचों की दाढ़ी में आग लगे, समझे ना। तो वे पंच गए खुश हो गए, ठीक है बाकी की दाढ़ी जलने दो, अपने बाप का क्या बिगड़ता है, अपनी तो सलामत है ना। क्या है ना, तो मैं कोई यहाँ के पंचों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उस गांव के पंचों की बात कर रहा हूँ जहाँ वे धर्म परीक्षा के चार मूर्ख अपनी मूर्खता का फैसला कराने के लिए गए थे। तो उन पंचों ने कहा कि तुम लोग अपनी अपनी मूर्खता की बात सुनाओ, तो उससे फिर हम फैसला करेंगे कि उन तुम में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है। अमित गति आचार्य का है, अमित गति आचार्य का नाम जानते हो आप, जिनका इस सत्येषु मैत्री गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम में सामायिक पाठ, जिन आचार्य का, उन्हीं आचार्य की धर्म परीक्षा नाम की किताब है, उसमें की ये बात मैं सुना रहा हूँ आपको, मेरे घर की बात नहीं है। तो उसने किससे सुनाए थे चारों ने, अब मैं चारों को तो आपको नहीं सुनाऊंगा उन्होंने क्या क्या सुनाए, थोड़ा नमूना बता देता हूँ क्या सुनाए। एक बोला कि मेरी दो पत्नियां हैं, तो मैं अब सो रहा था तो अपने माथे पर दीपक जलाकर रख लिया था यहाँ उजाले के लिए, और एक हाथ इस पत्नी पे रखे था एक इस पत्नी पे। रात्रि में चूहा आया और उसकी घी की बत्ती लेके भागा, तो मैं फड़फड़ाया तो वो बत्ती छोड़ के भाग गया, तो वो जलती हुई बत्ती मेरी इस आंख पे गिर गई। अब मैंने कहा कि ये हाथ उठाता हूं तो ये पत्नी नाराज हो जाएगी, ये हटाता हूं तो ये नाराज हो जाएगी, तो मैंने कोनों का हाथ नहीं उठाया, बीतरागी बना रहा, राग देश नहीं किया ना, इससे मेरी ये आंख जल गई। देखो ये जो मैं काना हूं मैं इसलिए जला था, बोलो हूं ना मैं महामूर्ख। एक कहानी, दूसरे ने अपनी कहानी सुनाई, ऐसी ऐसी कहानी है समझ लो आप। ऐसी ऐसी कहानियां हैं तो पंच भी एक से एक मूर्खता की कहानियां उनने सुनाई और पंच भी चक्कर में हो गए कि निर्णय नहीं कर पाए कि सबसे बड़ा मूर्ख इसमें कौन है। क्या तो ये जो मैं कह रहा हूँ वो किसके लिए? शांतिलाल जी के लिए कि चावड़ा जी के लिए? ऐसा झगड़ा क्यों करते हो? अरे कम से कम जो सुनने आया है उन सबके लिए तो है ही, पर जो नहीं आया है उनके लिए भी है। कैसे ले जाएंगे ना आप? तो वहां जाके उन्हें सुनाएंगे तो उनके लिए भी है कि नहीं है भाई साहब? अरे धर्म की बात है, आत्म कल्याण की बात है, सारा जगत स्वीकार करे, इसमें क्या तकलीफ है? तो क्या बात चलती थी अपनी कि यदि वो एकत्व नाम का संबंध स्वीकार करने में दिक्कत आती है, क्योंकि आचार्य महाराज साफ साफ बताते हैं, शास्त्र में भी साफ साफ लिखा है कि बेटा अलग है और तू अलग है, तू मर जाएगा और बेटा यहीं रहेगा, ख्याल में आएगा नहीं आया? तो एक कैसे हो सकते हैं? ट्रोटमजी ने लिखा कि नहीं, मूर्ख की भांति बोलता है, कभी कहता है बेटा जिएगा तो मैं ही जीऊंगा, कभी कहता है बेटा मेरा है, कभी कहता है बेटा मैं हूं। ऐसा ट्रोटमजी ने लिखा कि नहीं लिखा? मुहे की महिमा वाले प्रकरण में देख लेना, तीसरे दूसरे तीसरे अध्याय में ही है। अभी और आप देखो कि आपके यहां शादी है कमल जी, तो आपने मेरे को कार्ड दिया कि पंडित जी आपको जरूर जरूर पधारना। मैं हाँ 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 साहब, हाँ हाँ नहीं आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। कि सच्ची बात बताऊं कि हाँ, कि देखो मैं तो आ नहीं सकता, परमात्मा जरूर आएगा। अब इनको तो ये पसंद नहीं है कि परमात्मा आवे, तो ये कैसे कहेंगे परमात्मा को मत भेजना? होशियार आदमी है ना, बोले परमात्मा तो आएगा ही, लेकिन आपको अवश्य पधारना है, आपके पधारने से शोभा होगी। वो तो आएगा ही, वो मुफ्त नहीं आएगा, फालतू बैठा है। वो तो आएगा ही बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या है कि आवे तो ठीक, नहीं आवे तो ठीक, आएगा और दो रोटियां खाएगा तो रोटियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो आएगा तो आपकी हाजिरी नहीं लगेगी, आप समझ लेना। ये अर्थ है कि नहीं है? बोलो, भाषा कितनी अच्छी है कि वो तो आएगा ही, आपको अवश्य पधारना है, लेकिन उसका अर्थ कितना खतरनाक है। आवे तो ठीक, नहीं आवे तो ठीक, आएगा तो दो रोटियां खिला दूंगा लेकिन आपकी हाजिरी नहीं लगेगी, आप अच्छी तरह समझ लो आपको आना पड़ेगा। मैं समझ गया कि कमलचंद जी क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा देखो, वो आए तो यही समझना कि मैं ही आया हूं, होगी ना हम बुद्धि, कि तुम उसके आने को मेरी हाजिरी समझो तो ही भेजूं, नहीं तो मैं तो आऊंगा ही नहीं और वो भी नहीं आएगा। समझ लो, बोलो क्या कहना है? कि वो आएगा तो तुम यही समझना कि मैं ही आया हूं, तो इसी का नाम अहम बुद्धि है। क्यों, ठीक है क्या नहीं? कभी कहता है मेरा है, कभी कहता है मैं हूं। टोलेमल जी कहते हैं ऐसी भ्रम बुद्धि हो गई है इस मूर्ख को, अज्ञान में भी संशय है, माने अज्ञान में भी पक्का नहीं है, आत्मा को तो जानता ही नहीं है, लेकिन शरीर में हूं कि स्त्री में हूं कि पुत्र में हूं कि मैं क्या हूं, ये पुत्र मेरा है कि मैं हूं, इसमें भी कोई नक्की नहीं है, ऐसा अज्ञानी है। तो एकत्व बुद्धि हटती है तो ममत्व बुद्धि से पकड़ लेता है, तो ममत्व बुद्धि से कि तेरा कैसे हो सकता है। अब जरा थोड़ा उदाहरण बदलता हूं तो आपको ख्याल में जल्दी आएगा कि आपने एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट बनाया ना, तो कहा कि कभी तो ट्रस्ट को मैं मानता हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, करेगा तो ट्रस्ट, और भाषा कैसी बोलता है, मैं करूंगा, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, बोलना। हाँ हम 50 विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, मदरसा रखते हैं, उनको विद्वान बनाते हैं, तुम पढ़ाते हो कुनकुन कहान ट्रस्ट? हाँ वो ट्रस्ट हम एक ही था, एक ही था, एक ही था, उसके साथ एक बुद्धि करता है, फिर नहीं नहीं वो अपना ही तो है, अपना ही तो है, वो तो बुद्धि करता है क्या, वो लोग है क्या नहीं? चले एकत्व बुद्धि करी, ममत्व बुद्धि करी, हम ऐसा करेंगे, ऐसे बड़े जोम से हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे। लेकिन तू होता है कौन है करने वाला? सर का भैया ट्रस्ट का मतलब समझते हो तुम? क्या होता है ट्रस्ट? माने विश्वास, माने तुम पर समाज ने विश्वास किया है कि तुम इसको संभालो और इसके जो उद्देश्य हैं इसके पैसे को उसमें खर्च करो, अपने हित में खर्च करना। ये तुमने ट्रस्ट का घात माने विश्वास का घात किया, ये महापाप है। तुम ट्रस्टी हो, ये तुम नहीं हो, तुम्हारा नहीं है, इस धोखे में मत रहना कि हमारा है। क्यों? प्रधानमंत्री नरसिंहा राव देश भारत नरसिंहा राव नहीं है और नरसिंहा राव का नहीं है। नरसिंहा राव तो हमने चुन के उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है देश को संभालने के लिए, देश को बेचने के लिए नहीं, हड़प जाने के लिए भी नहीं। क्यों? तुम तो ट्रस्टी हो, तुम्हारा नहीं है, तुम भी नहीं हो। ऐसा है कि हाँ, अब समझता लुटा, अभी तो समझता था मैं हूं मेरा है, अब समझता गया मेरे हाथ से, तो दूसरी तरकीब से फिर पकड़ता है। अच्छा था मैं नहीं हूं, लेकिन किया तो बनाया तो ट्रस्ट मैंने ही है ना, इसका कर्ता धरता तो मैं ही हूं ना, फिर एक कर्तृत्व के बहाने उसको पकड़ता है, क्योंकि यह संबंध किसी न किसी रूप से रखना है, ये तोड़ेगा नहीं, इसलिए एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे रास्ते से पकड़ लेता है। अपने पास बहुत जमीन थी, क्यों? अब गवर्नमेंट का नियम आ गया है, कोई इतनी से ज्यादा नहीं रख सकता, तो फटाफट बेटे के नाम, बेटे की बेटी के नाम, इसके नाम उसके नाम, जो भी गर्भ में आया है बेटा उसके नाम, और बेनामी, क्योंकि इतने नाम है ही नहीं, जिसके नाम कर दो कोई हड़प जाए, थोड़ी एक आध दो मेरे नाम भी कर दो ना कमल जी, मीना में मेरी भी जमीन हो जाए, कि पंडित जी तुम्हारा क्या भरोसा, तुम कब्जे ही कर लो। तो फिर लोग ट्रस्ट बनाते हैं। ट्रस्ट इसलिए नहीं बनाते कि उन्हें उपकार करना है समाज का, बुरा मत मानना भैया, सच्ची सच्ची बात कहता हूं मैं। बस संपत्ति कैसे बचाई जाए, क्या वो कानून से तो अपनी रही नहीं, उस पर कब्जा कैसे कायम रखा जाए? क्यों? ट्रस्ट बना दिया और ट्रस्ट को जमीन दे दी, सारे ट्रस्ट की है, और फिर उसका भोग उपभोग, ट्रस्ट में गाड़ियां खरीद ली, पेट्रोल दौड़ रहा है, गाड़ियां दौड़ रही हैं, और सेठ जी घूम रहे हैं अपने आराम, क्यों तीर्थ यात्रा कर रहे हैं सेठ जी, है ना? कितनी कितनी तरकीबें हैं, वकीलों से पूछ लेना, ज्यादा मुझे मालूम नहीं है, मैं इक्की दुक्की यहां वहां सुन लेता हूं तो आपको सुना देता हूं कि नहीं, लेकिन वकीलों से पूछने की क्या जरूरत है, आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हो, तो करते भी हो ना। चलो डॉक्टर साहब, तो टेस्ट बनाकर कब फिर कहता भी टेस्ट तूने बना दिया, अब तेरा नहीं है, तू नहीं है, तू तो इसका ट्रस्टी है। तो करता तो हूं मैं, बनाया तो मैं नहीं है, अधिकार तो मेरा है, उपयोग तो मैं ही कर सकता हूं। तो यहां कोई धर्मादा धर्मादा चलता है ना, कि मंडियों में वो तो किसानों से पैसा काट लेते हैं और धर्मादा के मालिक खुद बन जाते हैं, उसे 5% भी धर्म में खर्च करते हो तो अपने मान पोषण के लिए, भलाई के लिए, इसके लिए कि ये बन है नहीं, वो तो बिल्कुल दूसरे का पैसा है, पर धर्म के काम में मैं खर्च करूंगा इस नाम से उसने काटा है, तो वो तो उसका ट्रस्टी है कि नहीं है? कौन उसे ट्रस्टी मिस्टी बनता है? वो सब उसे अपने ही नाम से खर्च करते हैं ना, खर्च करते हैं अपने मान बढ़ाई के लिए, म्यूनिसपैलिटी का चुनाव लड़ना हो तो उसी में से खर्चा करता है, प्याऊ बनवा दिए इसलिए चुनाव में जीत जाऊं इसलिए प्याऊ बनवाई, वैसे नहीं तो उसमें 3 पीढ़ियों का नाम लिखा देगा, धर्मादा के नहीं लिखाएगा, जिस किसान का काटा उसका नाम नहीं लिखाएगा, अपने बाप का, अपनी माँ का, अपने बाप के बाप का, 3 पीढ़ियों का नाम लिखाएगा। क्यों? तो उसका कर्ता बनता है, लेकिन जो ट्रस्टी होगा वही तो कर्ता बनेगा ना। अब भाग्य से वो ट्रस्टी भी नहीं है, ऐसे तो है वो लोग बड़े खुश हो रहे होंगे, हम ना ट्रस्टी ना हम वाले को सुरक्षित है, वे भी कम नहीं है। भोक्तृत्व का तो अधिकार हमारा है, मंदिर में दर्शन पूजन का अधिकार तो हमारा है, क्यों नहीं सही हमारा? ये पार्क पे हमारा अधिकार नहीं, लेकिन घूमने फिरने का अधिकार तो है। ताजमहल को क्यों, उसका उपभोग करने का अधिकार तो है। इस तरह भोक्ता बन के अपनापन स्थापित करता है। चार तरह से ये पर पदार्थों में अपनापन स्थापित करता है। कौन कौन सा? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। एकत्व को अहम, एकत्व बुद्धि को अहम बुद्धि भी कहते हैं और ममत्व बुद्धि को स्वामित्व बुद्धि भी कहते हैं। अब ये चारों से कट गया, देखो ताजमहल न मैं हूं, न ताजमहल मेरा है, न ताजमहल का मैं करता हूं, टेस्टी भी नहीं, मैंने बनवाया भी नहीं, और ताजमहल का मैं उपभोक्ता भी नहीं हूं। वहां जाके अपन मीटिंग कर सकते हैं अपनी, एक शिविर अपना ताजमहल पे लगाएं अगला। क्यों संतलाल जी, यदि ताजमहल पे शिविर लगाएंगे तो आप कितने लाख दोगे? बजट खत्म? शिखर जी में लगाओ तो देंगे, और टोडामल स्मारक भवन में लगाएं तो नहीं दोगे? वो शिखर जी में लड़ने जाए, अब तो वहां पर धमाधम होगा। अब तो शिखर जी पे जो लगने वाला है वो भी बंद होने वाला है भैया, अब कहां लगेगा? ना सीतामा धर्मशाला देंगे, और 20 पंथी तो देते ही नहीं है, 13 पंथी भी कौन से तुम्हारे पक्ष में है? क्यों अभी तो सीतामा दे देते थे जब तक ये झगड़ा शुरू नहीं हुआ था। पहले लगाया था सर, सारी सीतामा धर्मशाला अपने को मिली थी, और जम्बू द्वीप अपने को मिलेगा, अब कुछ नहीं मिलने वाला है। शिखर जी की छोड़ दो, दी नहीं ठीक है, जयपुर में नहीं लगाना है तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, समझने की बात है। तीर्थों क्षेत्रों पे सिविल लगाने से ज्यादा कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों नहीं? कि उसमें हमेशा घाटा में जाएगा वो सिविल। जितने लोग यात्री आएंगे तो वे पैसा तो देंगे तीर्थ क्षेत्र को दान में, तुम्हें नहीं देंगे, और खर्चा होगा तुम्हारा। और बिना के शिविर में आएंगे और उन्हें 2 रुपया देने का विकल्प आएगा तो काय में देंगे, शिविर में देंगे। समझ में आए ना? तो किसी गांव में लगा हुआ शिविर कभी घाटे में नहीं जाएगा, हमेशा मुनाफे में जाएगा। तुम्हारा भी मुनाफे में जाने वाला देख लेना। मेरा 28-27 का रिकॉर्ड है, 27 में कोई शिविर घाटे में नहीं गया, मैं ठेका लेने तैयार हूं। गांव में लगा कोई शिविर ठेके पे घाटे में नहीं गया, और तीर्थ पे लगा हुआ कोई शिविर घाटे के बिना गया नहीं। तुम्हें तो कहन समझ गए ना आप, कि वो तीर्थ की वंदना करेगा। अब वो शिखर जी में तो और तकलीफ, बराबर ये तकलीफ तो है ही। अब वो उसको पहाड़ पे जाना है, तो एक दिन पहाड़ पे जाएगा, उस दिन कोई प्रवचन में बैठ नहीं सकता, क्लास में बैठेगा नहीं, और दूसरे दिन टांगे सीधी नहीं होंगी, तो तीसरे दिन टांगे सीधी होंगी, और चौथे दिन फिर शिखर जी में जाने की कोशिश करेगा। समझे ना? आने जाने का किराया भी अपन उसे दे, मान लो कोई गरीब हो गए तो, अब वो शिखर जी की वंदना करेगा, तुम्हारे शरीर का कुछ सुनेगा ही नहीं। अब वो हल लगेंगे, तीर्थ पे कब्जा करना चाहते, ये करना चाहते, वो करना चाहते, ये करना चाहते, 50 चक्कर और भूल जाओ शिखर जी को। क्या बात चल रही थी अपनी? कि हमने करता है काय के, ताजमहल के, न भोगता है, न वो मेरा है, न मैं हूं। अब चार प्रकार से हमारा संबंध टूट गया, हम शिविर भी नहीं लगा सकते ताजमहल पे। अरे भाई, ये भारतीय जनता पार्टी वाले गए थे मीटिंग कर लेने दो, हमें करने दी थी, पुलिस ने डंडी मार मार के भगा दी है मालूम, तो हमें शिविर कैसे करने देंगे? तो हमारा तो कुछ नहीं रहा ताजमहल तक, कैसे नहीं है? हमें देखने का तो अधिकार है 10 रुपये का टिकट लेके, क्योंकि हम अधिकार तो छोड़ नहीं सकते। तो ये जब ये चारों नहीं बनते हैं तो कहता है मैं ज्ञाता निष्ठा तो हूं, पर को जानने देखने का तो मेरा अधिकार है। इस तरह जानने के बहाने पर से अपना संबंध कायम करना चाहता है। क्या समझे? ये जानना वो अपराध नहीं है, जानना तो स्वभाव है भगवान आत्मा का, सुपर प्रकाशक। अभी आएगी सब बात विस्तार से। लेकिन वो जानने तक सीमित कहाँ रहता है, पर जो जो जाना वो मेरा, जानने का अधिकार तो है, वो जानने में भी इसने अधिकार शब्द लगा दिया। भैया जानने का अधिकार क्या, जानो ना, जानने का अधिकार क्या, क्यों इस शिविर में प्रश्न सुनने का तो हमारा अधिकार है, इसे अधिकार की भाषा में बात क्यों करते हो ना, हम तो निमंत्रण दे रहे हैं ना, मेहमान बनो ना, आओ ना, सुनो ना, क्यों अधिकार क्या मांगते हो, हम तो तुम ये बात सुनो और साथ में लड्डू भी खाओ, लड्डू भी खिलाने को तैयार है। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं हमारा अधिकार है, अरे अधिकार है, हमने अधिकार मान लिया, अब तो सुनो, सुनना थोड़ी है, हमें तो अकेला अधिकार चाहिए, हमें तो पूजा का अधिकार चाहिए, पूजा करो करना थोड़ी है, अकेला अधिकार चाहिए, ट्रस्ट के सेवा हमें करना थोड़ी है, हमें तो अधिकार चाहिए, हमें तो ट्रस्टी बनना है, हमें तो अधिकार करना है, तो आओ संभालो ना, देखो ना संस्था में घाटा चल रहा है, इसके लिए थोड़ी है? हम आए सारे नौकर खड़े हो जाएं, जब देना होगा तो वैसे ही दे देंगे, देना होगा तो वो तो कभी आने वाला नहीं है। सिद्धांत के पक्के होते हैं ना, उनके सिद्धांत सिर्फ लेने लेने में पक्के होते हैं। क्या ख्याल में आया? तो ये राम की महिमा है क्या केवट की महिमा है? जब पंडित जी कहानी सुना रहे थे और बोले कि जब पार हो गए रामचंद्र जी तो वो जाकर सीधे चित्रकूट में पहुंच गए, तो एक श्रोता खड़ा हो गया, पंडित जी मेरे प्रश्न का जवाब दो, क्या है क्या है, क्या फिर उस केवट का क्या हुआ? क्या बेटा तुम केवटायन सुनने आया है कि रामायण? अब मेरी कहानी राम के साथ चित्रकूट जाएगी कि केवट के साथ केवट के घर जाएगी? बोल, फिर केवट का क्या हुआ मुझे क्या लेना देना? केवट कल कहाँ जन्मा था, कौन से गांव पैदा हुआ था, उसके बाप का नाम क्या था, कब मरा, उसके कितने बाल बच्चे थे, ये सब कहानी लिखी उसमें क्या? क्यों नहीं लिखी? क्योंकि केवट की कहानी बताना रामायण का उद्देश्य ही नहीं है। राम की रामायण में कवि की लेखनी तो राम के साथ चित्रकूट जाएगी, लंका जाएगी, जहां जहां राम जाएंगे तहां तहां जाएगी, केवट का पीछा नहीं करेगी। किसका पीछा करेगी? राम का पीछा करेगी ना। तेरे को प्रश्न भी राम के बारे में उठना चाहिए, केवट के बारे में नहीं उठना चाहिए, क्योंकि तू रामायण सुनने आया है, केवटायन सुनने नहीं आया। जिनवाणी में तुझे आत्मा राम ही दिखाई देना चाहिए, और कुछ दिखाई दे तो तू जिनवाणी सुनने नहीं आया है, समझ लेना भाई। जयपुर में पहले में बड़े मंदिर में प्रवचन करने जाया करता था, खुलासमल जी, टोडामल जी का मंदिर है ना, वहां जाता था। एक दिन जब मैं लौट के वहां आया, मैं और गोदका जी, तो हमारे टोडामल स्मारक के मंदिर के सामने दो भाई आदर्श नगर के बैठे थे। तो पंडित जी हम आपका इंतजार कर रहे थे। क्यों भी, क्या बात है? तो हम में झगड़ा हो गया आज। तो किस बात पे झगड़ा हो गया? तो इस बात पे झगड़ा हो गया कि आत्मा खाता है कि नहीं खाता है। तो झगड़ते झगड़ते हमने कहा चलो पंडित जी की अदालत में, तो आपके पास आए हैं फैसला कराने। जय कुमार जी बता रहे थे। मैंने कहा भैया 10 बज गए हैं, भोजन का टाइम हो गया है, पहले तुम चलो ऊपर और अपन दोनों जने खाना खाएं और वहां प्रैक्टिकल करके देखें कि आत्मा खाता है कि नहीं खाता है। चले नहीं साहब, खाना तो हम घर ही खाएंगे, हमें तो आप हमारे प्रश्न का जवाब दो कि आत्मा खाता है कि नहीं खाता। क्यों? तो मैं क्या क्या जवाब देता? मैं तो कांजी स्वामी का भगत हूं ना, तो मैंने सीधा सत्ता एक ही जवाब दिया कि आत्मा नहीं खाता है। तो एकदम जो आत्मा खाने वाले पक्ष वाला था ना, वो अकड़ के खड़ा हो गया, और दूसरा खुश, देखो मैंने कहा था ना कि आत्मा नहीं खाता है।
तो वो अकड़ के खड़ा हो गया कि आत्मा नहीं खाता है तो फिर कौन खाता है, इतना अनाज कहाँ चला जाता है, हजारों मन अनाज कहाँ चला जाता है। मैंने कहा उससे कि भैया ये अनाज कहाँ चला जाता है ये तेरी समस्या है, कि आत्मा खाता है कि नहीं खाता है। यदि तेरे से जब ये प्रश्न किया कि आत्मा नहीं खाता है तो तू आत्मार्थी है कि भोजनार्थी है, फिर अगला प्रश्न होना चाहिए था कि आत्मा नहीं खाता है तो आत्मा क्या करता है, आत्मा के बारे में अगला प्रश्न होना चाहिए था ना। तो तेरा अगला प्रश्न काय के बारे में हुआ, अनाज के बारे में, कि यदि आत्मा नहीं खाता है तो इतना अनाज कहाँ चला जाता है। मैंने कहा ये पूछना है जगजीवन राम से पूछ, मेरे से क्या पूछता है। उस वक्त प्रधानमंत्री खाद्य मंत्री जगजीवन राम थे, सबकी घटना है। अनाज कहाँ चला जाता है ये पूछना है तो जगजीवन राम से पूछ, और फिर आत्मा क्या करता है ये पूछना है तो पंडित हुकुमचंद से पूछ। मैं खाद्य मंत्री नहीं हूँ जो तेरे इस प्रश्न का जवाब दूँ कि अनाज कहाँ चला जाता है।